ஓம் சாந்தி. आप सभी भाई बहने आज किस भूमि पर आए हैं तो ये भी आपका कई जन्मों का तप का फल है, क्योंकि बाबा कहते हैं या भक्ति में भी हम ये सुनते थे पढ़ते थे कि बहुत तपस्या करने से, बहुत भक्ति करने से भक्ति का फल भगवान, और भगवान से जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से गति सदगति प्राप्त होती है। तो एक तो भक्त जो जिन्होंने देरी से भक्ति शुरू की है, पर बाबा के बच्चे जो बनते हैं वो जन्मों की तपस्या भक्ति के फल स्वरूप बनते हैं। तो भक्ति में हम सब यही चाहना रखते थे, कितनी मेहनत करते थे, बहुत अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह जल्दी अमृत वेले से, चाहे सर्दी है गर्मी है आंधी हो तूफान हो, परंतु बहुत ही सच्ची दिल से प्रेम से भगवान की लगन में मगन, मात्र यही संकल्प था कि कहीं स्वप्न में एक झलक भगवान की दिखाई दे जाए तो हमारा जन्म सफल हो जाए। तो क्या सोचा था, किस लिए भक्ति करते थे? तो जैसे कहा जाता है कि चाहा क्या था कण भर, और प्राप्त क्या हुआ है मन या तन भी नहीं कहेंगे। बाबा कहते बच्चे पद्मा पद्म भाग्यशाली हो, तो आप सब क्या समझते हैं अपने को कितने भाग्यशाली हैं जो आज इस भूमि पर पहुंचे हैं। ये कौन सी भूमि है? ये है भगवान की अवतरण भूमि, कर्म भूमि, जिस स्थान पर स्वयं डायरेक्ट परमात्मा आकर, शिव बाबा आकर विश्व के परिवर्तन का कार्य करते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने का, दुख धाम को सुख धाम बनाने का, नरक को स्वर्ग बनाने का, स्वयं भगवान यह कार्य करते हैं। ये उस प्रभु की शिव बाबा की अवतरण भूमि, वर्षों से बाबा ने यहाँ ये कार्य किया कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, स्वयं भगवान का रथ जो स्थापना के निमित्त बने, और हमारी वो तपस्वी मूरत दादियां जिनका आज एक एक संकल्प एक एक श्वास गीत में सुन रहे थे कि सफल कर लो श्वास अपने। क्यों, कौन सा श्वास अंतिम हो ये कोई भी जानता नहीं है। तो यहाँ इतनी तपस्वी महान विभूतियों की लंबे काल की तपोभूमि तपस्या भूमि, जिसके कण कण में तप का बल है, वहां पे आज आप पहुंचे हैं। तो कितने महान पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं कि भक्ति में आप जिन मूर्तियों के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ चढ़ के जाते थे, यहाँ आप चेतन में उन महान विभूतियों के दर्शन करेंगे, उनके वाइब्रेशंस अपने अंदर भरेंगे, वो शक्ति, वो खजाने। तो अभी नया वर्ष आने वाला है, मात्र 2 दिन हैं, तो कई बार बाबा के, बाप दादा के ये महावाक्य हैं, जैसे आप देखो तो कोई भी गवर्नमेंट के काम हैं, बिजनेस है, तो वर्ष के अंत में सब अपना अकाउंट चेक करते हैं, पूरे वर्ष का घाटा फायदा क्या है और नए वर्ष में क्या करना है उसका प्लान बनाते हैं, संकल्प करते हैं कि अब नए साल में हमें क्या क्या करना है। तो बाबा भी कई बार कहते हैं कि बाप दादा ने बच्चों का खाता चेक किया, सारे वर्ष का पुरुषार्थ का देखा, क्या क्या जमा किया है। तो बच्चे इस नशे में रहते हैं कि हम सुबह से लेके बहुत हमने बाबा को याद किया, सेवा की, तन लगाया, धन लगाया, समय लगाया, तो हमने बहुत जमा किया है, परंतु बाबा कई बार देखते कि बच्चे सोचते हैं हमने बहुत जमा किया है, लेकिन बाबा जब बच्चों का खाता चेक करते हैं, जांच करते हैं, तो क्या होता है, वो बाबा को उतना जमा दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, और बच्चे समझते हैं हमने बहुत जमा कर लिया है और जमा करते भी हैं, परंतु क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जमा के खाते से घाटे के खाते में चला जाता, लीकेज हो जाता है। अब नल के नीचे बाल्टी रखी है और उसमें छेद है, तो बेशक सारा दिन नलका चलता रहे, भरता रहे, लेकिन लीकेज भी होता जा रहा है, तो फिर रिजल्ट क्या होगा, खाली का खाली रह जाता है। तो ये देखना है कि जो हम जमा करते हैं तो कोई छेद ना हो उसमें। तो जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि सारे कल्प में जमा करने का जो समय है वो अभी का ही है, चारों युगों में अंतिम समय ये पुरुषोत्तम संगम युग, और फिर अब संगम का भी अंत की घड़ियां चल रही हैं, और पूरे ही कल्प का पुरुषार्थ हमें इसी थोड़ा सा जो समय मिला है इसी में करना है। एक तो जो पास्ट का आत्मा के अंदर हिसाब किताब है वो भी चुक तो करना है, दग्ध करना है, और फिर भविष्य, फ्यूचर के लिए जमा भी करना है। तो जो चुकतू करना है वो भी अनेक जन्मों का है, और जो भविष्य बनाना है वो भी अनेक जन्मों का है, पर समय यही है। जो हम आज दुनिया का वातावरण देख रहे हैं, हालात को देख रहे हैं, और हर एक समझ भी रहा है कितना समय, हम ही बच्चे नहीं पर दुनिया के भी लोग आज समझ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है। तो जैसे गीत में सुन रहे थे, सफल कर लो स्वां सपने, तो बाबा ने हम बच्चों को कितने खजाने दिए हैं, कितने दिए हैं बाबा कहते ये संगम युग में बाबा ने अविनाशी बैंक खोला है, ये इंश्योरेंस कंपनी भी है। जो बच्चे जमा करते हैं विद इंटरेस्ट जो है वो उनको भविष्य में मिलता है। जितना जमा करेंगे उसका कई गुना पदम गुना बाबा रिटर्न करेंगे। तो अब इस संगम युग के जो विशेष खजाने हैं, तो एक तो स्थूल खजाने हैं, तन से सेवा करते हैं, धन लगाते हैं, पर सूक्ष्म श्वास है, समय है, संकल्प है, और बाबा के दिए हुए खजाने ज्ञान का धन, ज्ञान के रतन, गुण शक्तियां, हर खजाने को स्व के उन्नति पुरुषार्थ में और सेवा में लगा करके क्या करना है। अभी बाबा कहते बच्चे जो लेना चाहो बाप से ले सकते हो, जो बनना चाहो बन सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। ओम शांति। तो हमारे आदरणीय विजय दीदी जी आए हैं, तो हमने कहा जब तक ये पहुंचे तब तक थोड़ा हम आपको व्यस्त रखते हैं। तो हमारे आदरणीय विजय दीदी जी जींद में रहते हैं, तो इनका नाम ही विजय है। और बाबा कहते विजय बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो विजय दीदी जी जब पंजाब में सेवा केंद्र नहीं थे, दिल्ली में मेजर की कोठी पर साकार बाबा गए, तो वहां ये पंजाब से दिल्ली में जाते थे ज्ञान सुनने, और 62 से लेके 1962 से समर्पित रूप से यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं। और जींद सेवा केंद्र और उनसे जो कनेक्टेड सारा जो इनका सर्कल है बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। ग्राम विकास जो हमारा बहुत एक सत्युग में सभी को सात्विक भोजन चाहिए ना, तो वो विभाग इनका भी सही योग बल से ऐसे शुद्ध अन्न का, ये आप सब जानते हैं, ये स्वयं सुनाएंगे। और इनकी बहुत सारी सेवाएं और बहुत स्नेही, आप देख रहे हैं कितना इनके नैनों से स्नेह की सबको फीलिंग आ रही है, अनुभूति हो रही है। तो हम बहुत बहुत इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अपना समय निकाल कर पहुंचे हैं, तो ये अपना अनुभव आपको सुनाएंगे आदरणीय विजय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति सागर बाप ने आकर हम सबको शांति पाठ इतना अच्छा सिखाया है कि जीवन में असली रियल शांति क्या होती है उसकी अनुभूति बाबा का बनने के बाद ही अच्छी तरह हुई है। शांति शांति तो दुनिया वाले भी बहुत कहते हैं और मांगते हैं भगवान से, लेकिन बाबा का बनने बाद अंदर की शांति अनुभव हुई, प्राप्त हुई, इसलिए हम देखते हैं कि सचमुच भगवान रत्नागर ज्ञान सागर ने हम सबको भी कहां कहां से चुना है। कहाँ कहाँ हम बाबा के मोती बिखरे हुए थे, इसलिए जब हम बाबा के बने सचमुच वो गीत भी सुनते थे कि बाबा के मोती बिखर गए, तो बाबा ने आके चुनने शुरू किए, ढूंढने शुरू किए कहाँ गए वो मोती। हमें ऐसा ही अनुभव रहा अपनी इस जीवन में। छोटेपन में ही हम गीता आदि पढ़ते थे, भक्ति मार्ग में जैसे घर में लौकिक में पढ़ते थे, करते थे भक्ति, ऐसे ही हम भी गीता पढ़ते थे रोज। श्री कृष्ण की भक्ति बहुत की हमने, वैसे भक्ति नहीं, पूजा पाठ की तरह नहीं, पर अंदर से याद बहुत किया, क्योंकि भागवत पढ़ते थे घर में लौकिक में, हमारे लौकिक माता पिता भागवत सुनते पढ़ते थे, तो हम भी छोटे होते ही सुनना शुरू कर दिया। पर जो भागवत की कथा कहानियां थी सुन करके श्री कृष्ण जी की तरफ खींच बहुत होती थी, और मैं दिल ही दिल में कहती थी, हे श्री कृष्ण भगवान, हमें क्यों नहीं अपने पास बुलाया, मुझे भी अपने पास बुला ले, ऐसे मन में खींच होती थी। पर कहाँ है श्री कृष्ण, कैसे उसके बन सकते हैं, कुछ पता ही नहीं था। ये तो आप सब भी अनुभवी है कि जो पता नहीं था वही तो भगवान ने पता दिया ना आके, है जब अपना बनाया। तो हम पंजाब में लुधियाना के पास ही लौकिक घर हमारा था, ललतोखला गांव है, अब तो कोई नहीं है लौकिक वहां पर, लेकिन हम वहां रहते थे। वहां हम ज्ञान में जब चले, हमारे लौकिक में बुआ लगती थी, वो नए नांगल में ब्रिजमोहन भाई जी के पास से सुन के आई थी, और ब्रिजमोहन भाई जी के पास से जब सुन के आई तो वो थोड़ी मुरलियां ले आई थी। उस समय मुरली होती थी लिथों पे जामनी कलर की, तो वो हफ्ता सुन के आई, उसने हमें आके सुनाया, तो सबसे पहले मुझे अच्छा लगा ज्ञान। और उसमें भी सबसे पहले जब मुरली मैंने देखी, तो उस मुरली को देख के मुझे ऐसे लगा, ये तो मैंने पढ़ी हुई है, ये तो मैंने सुनी हुई है। और वो त्रिमूर्ति वाला चित्र ले आई बहन, तो चित्र में जब बाबा का फोटो देखा, तो उसने जब कहा ना, ये भगवान शिव निराकार परमात्मा इस ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होके ये मुरली रोज चलाते हैं। तो मैं ऐसे देखते देखते मैंने कहा, ये तो मैं पढ़ती रही हूँ, ये तो मैंने सुनी हुई है, ये ब्रह्मा बाबा तो मैंने देखा हुआ है। मुझे ऐसी स्मृति आने लगी जैसे पिछले जन्म में मिली हुई हूँ मैं बाबा से। तो मुरली रोज पढ़ने लगे, कोई और आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं, उस समय साप्ताहिक कोर्स को इस तरह से नहीं सुनाया हमें, लेकिन सिर्फ मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, इस शिव बाबा के हम सब बच्चे हैं, उस बहन ने इसी तरह सुनाया। तो हफ्ता भर सुना, फिर वो बहन चली गई ब्रिजमोहन भाई जी के पास, वहां पर मोहिनी बहन जी भी वहीं होते थे, चाची जी होते थे ब्रिजमोहन भाई जी के, माता जी उनको यज्ञ में चाची जी कहते थे, तो वो भी होते थे। फिर वो बहन ने कहा कि इनके पास बहुत अच्छी मम्मा आने वाली है, मातेश्वरी आने वाली है। मैंने कहा मैं भी जाऊंगी, लौकिक में बाप को कहा मैंने भी जाना वहां, तो कहा नहीं नहीं ये ज्ञान योग सुनने की बातें जो है ना, ये तो बड़े बड़े योगी तपस्वी लोग सुनते करते हैं, तुम कैसे कर लोगी, क्योंकि मैं उस समय 15-16 साल की आयु की थी, ये तुम्हारे वश का नहीं है, ये तो जंगल की तरफ जाते हैं ना ऋषि मुनि, वो करते हैं ज्ञान योग की बातें। तो मैंने कहा नहीं, एक बार मुझे जाने दो। तो मैं भी वहां पर चली गई, हमारे लौकिक पिताजी ले गए, तो मैं वहां ही रही 20-25 दिन। मम्मा आई वहां, मम्मा की दृष्टि इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी, जैसे अंदर की मम्मा कालिमा छीन रही है, ऐसे अनुभव होता था मम्मा की दृष्टि से। तो दृष्टि लेते 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 मैं तो मम्मा की गोद में ही चली गई। कितनी देर तक मम्मा की अनुभूति वो न्यारी है, कैसे बताया जा सकता है, कहने का मतलब अंदर से बहुत ही शक्तिशाली मम्मा की दृष्टि पड़ी। और फिर मैंने मम्मा को कहा, मम्मा मैं तो आपके ही साथ चलूंगी। क्योंकि लौकिक में जब ज्ञान सुनना शुरू किया ना, तो मुरली पढ़ते सुनते रहे, तो मैं बाबा से पत्र व्यवहार करती रही और बाबा को कहती रही, बाबा आपके ही पास मुझे यज्ञ में ही आना है, यज्ञ में ही रहूंगी। जैसे ये पुरानी कोई स्मृति खींच रही थी, तो मम्मा को जब मैंने कहा, मैं बाबा को कहा मैं तो यज्ञ में ही आना है, मम्मा ने कहा नहीं, उस समय लुधियाना सेंटर खुला नहीं था, प्रयास कर रहे थे, काफी मकान आदि ढूंढे हमारे लौकिक माँ बाप ने भी उस समय, बल्कि एक मकान लेकर के कुछ दिन रहे हम वहाँ, और हमारे मकान में ब्रिजमोहन भाई जी भी आए, मोहिनी दीदी भी आए वहाँ, उन्होंने भी आके कहा नहीं यहाँ लुधियाना मकान खोलेंगे, मकान लेंगे, सेंटर खोलेंगे, पर कोई उस समय तक नहीं इतना ठीक ढंग का दिखाई दिया। तो हम फिर मम्मा ने कहा जब लुधियाना सेंटर खुलेगा ना, तब तुम सेंटर पे रहना यज्ञ में, तब तक तुम अपने पिता के साथ लौकिक घर में ही जाओ। मैं 20-25 दिन रही, मम्मा 3 दिन रही थी वहाँ, 3 दिन रहने के बाद जब मम्मा चली गई, फिर मुझे इतनी खींच हुई कि नहीं मैं तो इस मम्मा के साथ ही जाना। मैंने चली तो गई घर, लेकिन अंदर से खींच वही रही, और घर में जाके भी ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ तो घर में तो मेहमान हूँ, मेरे को इस घर में नहीं रहना है। और अंदर से ऐसा मम्मा ने हल्का कर दिया जैसे काली माँ खत्म कर दी, फूल बन गए, पूरी परम धाम की स्मृति में रहने लगी मैं, जैसे मैं आत्मा परम धाम में ही चल रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ। बड़ा अच्छा अनुभव रहा कुछ दिन ही। फिर बाबा ने आना था दिल्ली में मेजर की कोठी में, तो हमारे लौकिक पिताजी ना पहले तो चल पड़े ज्ञान में, भक्ति मार्ग में थे, लेकिन उनको कुछ संशय पैदा होने लगे कि हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की सारी पुस्तकें, सिद्धांत इस ज्ञान ने तो उल्ट कर दिए। वो तो ये कहने लगे हमारा सारा ज्ञान ध्यान खत्म कर दिया। फिर कौन है तुम्हारा दादा लेखराज, मैं जाऊंगा उनके पास। तो हमने ब्रिजमन भाई जी को बोला कि भाई हमारे पिताजी तो अब विरोध करने लगे हैं, पहले तो बड़ा अच्छा लगा उनको, तो कहने लगे मम्मा ने आना है दिल्ली में। दिल्ली में गए पहले हमारे पिताजी मम्मा से मिलने, उनको वहां बहुत अच्छा लगा, फिर वो ठीक खुश होके आए तो फिर मेरे को नंगल ले गए। कहने का मतलब, फिर ब्रिजमन भाई जी ने कहा कि बाबा ने दिल्ली में मेजर की कोठी में माल रोड पे बाबा को निमंत्रण दिया था मेजर ने, तो वहां आना है आप पिताजी के साथ, वहां चले जाओ बाबा से मिलने। तो मैं ऐसे ही किया, पिताजी को बोला कि भाई मेरे को लेके चलो बाबा के पास। तो जैसे ही मैं बाबा के पास गई, मोहिनी दीदी थे, मनमोहिनी दीदी बड़ी थी, उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छा बाबा के नजदीक लाया। तो जैसे ही हम गए बाबा से, पहले ही दिन मेजर की कोठी में थे बाबा, बड़ा पंडाल लगा होता था, यही दिन थे, मेरे को कल परसों से वही स्मृति आ रही है कि दिसंबर का लास्ट ही था 1962 में, जब मैं बाबा से वहां मिली थी साकार में। तो बाबा ने दृष्टि इतनी अच्छी दी, बस क्या बताएं आपको, कि सर्च लाइट पड़ रही है, और हम सारी कन्याओं को ऐसे आगे बिठा दिया था, वहां पंडाल लगा हुआ था, सर्दी के दिन थे, आसपास से जैसे मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, वहां से जो भी आसपास होते थे सेंटर, बस से भर भर के सुबह के बाबा की क्लास में आते थे बहन भाई। तो जो भी आते थे इस तरह से बैठे होते, और हम जैसे छोटे बच्चे कह लो, 18-17 साल की थी, 15-16 साल की थी, ऐसे और थोड़ी ऐसी कन्या आगे बाबा के बिठा दी। तो जैसे हम बैठे, बाबा सामने दृष्टि पड़ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे लाइट और माइट हमारे अंदर आ रही है। जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा के महावाक्य शुरू हुए, तो वो लाइट और माइट आते आते हमें तो बिल्कुल अच्छी अनुभूति ऐसी हो गई हल्की। और जैसे ही बाबा के महावाक्य पूरे होते थे, तो बाबा से पर्सनल ग्रुप मिलने जाते थे। बाबा के मिलने का अलग कमरा होता था, जैसे विजिटिंग रूम होता है, सारे हम ऐसे बैठ जाते थे ग्रुप, जैसे नीचे बाबा से बैठते। उस समय तो ये फर्नीचर आदि होते नहीं थे ज्यादा, तो बाबा भी गद्दी पर बैठे और हमारा ग्रुप भी आगे दीदी ने बिठा दिया। दीदी ने कहा, बाबा ये विजय आई है लुधियाना से, ये मम्मा से मिले थे इनके पिताजी, बहुत अच्छे हैं, ऐसे थोड़ा करके। बाबा ने जब दृष्टि दी, बस फिर सुदबुद्ध एकदम भूल गई, फिर बाबा की गोद में ऐसे पड़ गई मैं, तो कितना टाइम तक क्या बताएं, सागर मिल गया प्यार का, तो ऐसा लगा बिछड़ा हुआ बाप मिला है, बिछड़ा हुआ मात पिता मिला है, अथाह प्यार का सागर, शक्ति का सागर, आनंद का सागर अनुभव होने लगा। हम वहां पर से उठे, मैंने कहा बाबा मैं घर नहीं जाऊंगी, लौकिक बाप के साथ नहीं जाऊंगी। बाबा को भी लगा ये तो अपनी ही बच्ची है, बाबा ने कहा ये तो अपनी ही आत्मा है, ऐसे अनुभव कराया। बोला बाबा ने कहा ये अपनी ही गई हुई आत्मा है। फिर बाबा ने कहा मोहिनी दीदी को कि इनको ना चंद्रमणि दीदी के साथ भेज दो ट्रेनिंग पे। तो उस दिन दीदी के साथ 10-12 कन्याएं जा रही थी अमृतसर, लेकिन वहां से वो निकल चुका था ग्रुप जाने के लिए ट्रेन में। तो दीदी ने पता किया, दीदी ने कहा बाबा चंद्रमणि तो चली गई लेके कन्याओं को। बाबा ने कहा ये अपने पास ही रहेगी, यहाँ ही रहेगी। तो वहां ही बाबा ने मुझे रखा कोठी में। 2 दिन हो गए, ऑलराउंडर दादी आई, रुक्मणी दादी रोज आते थे ना सुबह की क्लास में बाबा के। तो रुक्मणी दादी कहती, विजय तुम कहाँ रुकी हुई हो? मैंने कहा दादी मुझे बाबा ने यहाँ ही रोका है। कहती यहाँ तो किसी को रोकते नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मधुबन का ग्रुप भोली भंडारी के साथ जो भंडारे में काम करते हैं वही रुकते हैं, औरों को तो बाबा सेंटरों पर भेज देते हैं। मैंने कहा मुझे तो बाबा ने रखा, अपन तो भोले बनने, मैंने कहा मुझे तो बाबा ने अपने पास रखा हुआ। तो मैं 2-3 दिन वहां रखा बाबा ने, तीसरे दिन फिर मेरे को मालवीय नगर सेंटर पर जो लक्ष्मण भाई और सुंदरी बहन है उनके पास भेजा बाबा ने। तो उनके पास जाके भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। बाबा ने 3 दिन अपने पास जो रखा तो वो तो बिल्कुल जैसे घर में छोटे बच्चों को दादा दादी लेके बैठ जाते हैं, ऐसे बाबा इस समय रात के टाइम बैठ जाते हैं, अपना बचपन का अनुभव या जो भी अपने अनुभव होते हम सबको सुनाते। तो हमें तो बहुत ही अच्छा ये अनुभव रहा कि लौकिक से भी अलौकिक मात पिता की पालना में हम वहां रहे। 3 दिन वहां रहे, फिर बाबा ने वहां से सेंटर पर भेजा सुंदरी दीदी के साथ, लक्ष्मण भाई होते थे। तो हम सेंटर पर जब जाने लगी ना, वो दिन मैं आज तक भी अनुभव सुनाती हूँ कन्याओं को, कि मुझे अंदर से ये संकल्प पक्का रहा कि मुझे यज्ञ में जीते जी मरना है। बाबा कहते थे यज्ञ में रहना है तो जीते जी मरना है। मरने का भाव कि अपना सब कुछ परिवर्तन। तो मैं जाती रही रास्ते में, उनके साथ टैक्सी में थी, तो बिल्कुल अंदर से कि मुझे बाबा सेंटर पे भेज रहे हैं, मुझे मर के चलना है अपने पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने के लिए। हाँ तो कहने का मतलब यज्ञ में अगर जीवन में जीना है तो मरकर जीना है, ये पाठ पक्का रहा। क्योंकि हम तो सोचते थे यज्ञ में सब बने बनाए देवताएं हैं, बाबा की मुरली में आया यज्ञ में तो बन बन की काठी है। माना ऐसे नहीं समझो कि सब बने बनाए देवता हैं, बनाने आया है बाप, हम सबको देवता बना रहे हैं। तो इतनी अच्छी अनुभूति रही कि बाबा रोज हमें पाठ पढ़ा रहे। दादियों के पास जाते थे तो भी दादी कहते थे, ब्रजेंद्रा दादी या ब्रिशांता दादी कहते, ये तो अपने यज्ञ की गई हुई आत्मा है। सभी दादियों से ऐसा अनुभव रहा कि हम सब इन दादियों से पालना लेते रहे, अनुभूति यही रही। और सबसे पहले जब हम मधुबन में आए तो 1963 में आए थे बाबा के पास, तो भी बाबा ने बहुत अच्छी पालना दी शक्तिशाली बनाने के लिए। फिर हम 15 दिन, 20 दिन, हफ्ता, 10 दिन रहते थे हमेशा जब भी बाबा के पास आते थे। फिर अनुभव तो ये बहुत चलते रहेंगे, फिर सही समय के अनुसार। तो बेहद अनुभव है, बेहद प्राप्तियां, बेहद के माता पिता से बेहद प्राप्तियां करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हैं। आज आप सबके बीच हैं, फिर मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति। जल्दी